हरे कृष्ण। तो आज हम श्री भागवतम के इस तात्पर्य चर्चा कर सुने, तीन विषयों पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले कैसे धर्म धन भाव बंधन का कारण बनता है, दूसरा वैदिक शास्त्रों में अपराधर्म के स्तर पर इस बंधन से बचने का क्या विधि बताया गया, अपराधर्म मतलब धर्म अर्थ काम मोक्ष, और फिर श्रीमद् भागवत में पराधर्म के स्तर पर किस तरह से धन का उपयोग किया जाता है, करना चाहिए, ये तीन विषयों पर हम चर्चा करेंगे। तो भागवतम के सातवें स्कंद में जब प्रह्लाद महाराज अवधूत ब्राह्मण से मिलते हैं, तो वहां पे अवधूत ब्राह्मण बड़े विस्तारित रूप से कैसे धन से क्लेश मिलता है उसका वर्णन करते हैं। पश्यामि धनिनां क्लेशं लुब्धानां अजितात्मनां, कहते हैं पश्यामि, मैंने मेरे आंखों से देखा है, क्या धनिनां क्लेशं, कैसे धनी लोग हमेशा क्लेश से पीड़ित होते हैं। क्यों क्लेश से पीड़ित होते हैं, धन है तो भोग कर सकते हैं नहीं। लुब्धानां अजितात्मनां, दो कारण बोलते हैं, एक है कि लुब्ध, लुब्ध मतलब लोभी, क्योंकि वे लोभी है, कितना भी धन हो उसे संतुष्टि नहीं होते, और अजित आत्मनाम कि उन्होंने अपने इंद्रियों को नियंत्रण नहीं किया है, इसलिए कितना भी धन प्राप्त कर ले लोभ ही वैसे ही रहता है, इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं है तो हमेशा क्लेश रहता है। तो ये क्लेश किस चीज का क्लेश है, क्लेश है असंतुष्टि का। इस भौतिक जगत में सब व्यक्ति स्वयं को, स्वयं के जीवन को, स्वयं के व्यक्तित्व को अपूर्ण समझते हैं। मेरे समथिंग इज मिसिंग इन माय लाइफ, मेरे जीवन में कुछ कमी है, तो सब लोगों को ऐसे महसूस होता है। तो वास्तव में ये कमी है कि हमारा भगवान से संबंध नहीं है। प्रभुपाद जी ईशोपनिषद के जो इन्वोकेशन है, जो पहला ओम पूर्ण मधा पूर्ण जो प्रार्थना का श्लोक है, उसके तात्पर्य लिखते हैं, ऑल फॉर्म्स ऑफ इनकम्प्लीटनेस आर फेल्ट ड्यू टू इनकम्प्लीट नॉलेज ऑफ द कम्प्लीट, कि जो पूर्ण परम सत्य है उनका अपूर्ण ज्ञान होने के कारण हमें अपूर्णत्व महसूस होता है। अपूर्णत्व महसूस होता है मतलब, तो जब हम युवावस्था में होते हैं तो लगता है कि मुझे एक स्त्री चाहिए, स्त्री है तो मुझे पुरुष चाहिए, मुझे धन चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे घर चाहिए, ये सब क्यों चाहिए, उससे हम सोचते हैं कि मेरी अपूर्णता पूर्ण हो जाएगी। इसीलिए जीवात्मा बहुत प्रयास करता है, और जो धन है वह ये अपूर्णता पूर्ण करने की हमें एक मिथ्या आशा प्रदान करता है, धन मिल जाएगा तो जो भी मुझे अपूर्णता लग रही है मेरे हृदय में वो पूर्ण हो जाएगी। पर वास्तव में ये जो अपूर्णता है वह भगवान की विस्मृति है, द वॉइड इन द हार्ट, हृदय में जो रिक्त जगह हो गई है, तो उसको हृदय में जो रिक्त जगह है वो भगवान के प्रेम के अभाव से है। वो हृदय की रिक्त जगह हम हमारे पेट को खाना खिलाने से, हमारे इंद्रियों को भोग गिराने से, हमारे घर में फर्नीचर भरने से, हमारे दिमाग में जानकारी भरने से, हमारे बैंक अकाउंट में पैसा भरने से, इन सब चीजों से हृदय को हम भर नहीं सकते। मैंने एक मेरे किताब में लेख लिखा है, एम्प्टी हार्ट्स, एम्प्टी हार्ट्स फिल्ड बैंक अकाउंट्स, से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। आपका बैंक अकाउंट कितना भी भरा हो अगर हृदय खाली है तो संतुष्टि नहीं होती है। पर माया क्या प्रलोभन देती है कि अगर मेरे पास पैसा होगा तो फिर लोग मुझे प्रेम करेंगे, लोग मुझे आदर देंगे और फिर मेरा हृदय संतुष्ट हो जाएगा। भौतिकवादी लोग भी जानते हैं कि सिर्फ पैसे से आनंद नहीं मिलता है, पर उन्हें लगता है कि पैसे से मुझे लोग प्रेम करेंगे, ये लोग आदर देंगे। तो ये सत्य है एक दृष्टि से, पैसे से लोग आदर देते हैं, पर वो आदर वो व्यक्ति को नहीं देते हैं, वो उसके पैसे को देते हैं। तो जब हम कोई बाह्य चीज प्राप्त करते हैं जिससे कि हम आदर प्राप्त करें, हम सम्मान प्राप्त करें, सिक्योरिटी सुरक्षा प्राप्त करें, तो बाह्य चीज कभी हमें शाश्वत संतुष्टि नहीं दे सकता है। मैं एक बार गोवा मंदिर में गया था और तभी मैं नहाने गया, तो नहा कर आ रहा था, मैं आश्रम में आ रहा था, तो मैं कुछ भक्त अलग अलग सेवा कर रहे थे और फिर मैं अपने कपड़े पहनने लगा, सैफरन पहनने लगा, तो सब भक्तों ने प्रणाम कर दिया। तो फिर तब मैं हंसने लग गया कि ये जो भक्त है ये मुझे आदर नहीं कर रहे, सैफरन ड्रेस को देख के आदर कर रहे। तो जो गुरु के कृपा से जो सैफरन ड्रेस मिला है उसके आदर के अनुसार मुझे जीवन जीना चाहिए। पर पॉइंट ये है कि साधारणतया भौतिक जगत में हम कुछ बाह्य चीजों के द्वारा जब आदर सम्मान संरक्षा प्राप्त करने का प्रयास करते हैं तो बहुत वो हम असंतुष्ट रहते हैं, असंतुष्ट रहते हैं, क्योंकि वो जो आदर है हम जानते हैं हृदय में कि यह मुझे नहीं मिल रहा है। उसके कारण खास करके अगर कोई व्यक्ति कोई गवर्नमेंट जॉब में हो और बड़ी ऊंची पोस्ट पर हो तो उसको रिटायरमेंट का बड़ा डर होता है कि रिटायर हो जाएगा तो सारे जो दफ्तर के लोग हैं पहले इतना आदर करते बाद में कोई पूछेगा ही, तो बहुत बार रिटायर होने के बाद वहां पर जाने को भी पसंद नहीं करते लोग, तो क्योंकि वो भले ही स्वीकार न करे बाह्य रूप से अंदर जानते हैं कि ये आदर मुझे नहीं दिया जा रहा है, ये आदर मेरी पदवी को दिया जा रहा है। तो इसलिए जो व्यक्ति अपने हृदय की अपूर्णता बाह्य चीजों से जब पूर्ण करने का प्रयास करता है तो वह असंतुष्ट रहता है और वह इनसिक्योर असुरक्षित रहता है। पर यह माया का मोह है कि ये भौतिकवादी व्यक्ति भी ये असंतुष्टि अपूर्णता असुरक्षितता महसूस करता है, पर वो क्या सोचता है कि मैं और धन कमा लूंगा तो फिर सुरक्षित हो जाऊंगा, और धन कमा लूंगा, तो इस तरह से वो इसी मिथ्या प्रयास में लग जाता है। और प्रभुपाद जी 14वें अध्याय में भगवद गीता के तात्पर्य में बताते हैं कि लोभ यह रजोगुण का लक्षण है, लोभ प्रवृत्ति आरंभ कर्मणाम अशमस्पृह रजस्यैतानि जायन्ते विवृद्धे कुरुनंदन। 14वें अध्याय के 12वें श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि लोभ प्रजोगुण का पहला लक्षण है लोभ। तो वो श्रृंखला है तात्पर्यों के, बहुत सुंदर तात्पर्य प्रभुपाद जी वहां पे लिखते हैं, वहां पे बोलते हैं कि अगर कोई व्यक्ति असंतुष्ट है अपने जीवन में तो वह धन प्राप्त करके खुद को संतुष्ट नहीं कर सकता है। उसको अगर संतुष्ट होना है तो एक ही मार्ग है कि कृष्ण भावना को प्राप्त करके वह रजोगुण से खुद को सत्वगुण में लाए, तभी वो संतुष्ट हो सकता है। क्योंकि क्या है, ये जो रजोगुण है ये एक मन की बीमारी है, मन का विकार है। शास्त्र में उदाहरण आता है खुजली का, जब खुजली होती है तो ऐसे लगता है खुजलाने से राहत मिल जाएगी, पर खुजलाते हैं तो क्षणिक राहत मिलती है, पर बाद में और वो खुजलाने की इच्छा बढ़ जाती है और वहां पे जो फोड़ा है वो भी बढ़ जाता है। तो खुजली साधारणतः काम वासना के लिए उदाहरण दिया जाता है, पर वही जो तत्व है वो लोभ के लिए भी लागू होता है। तो ये मन की बीमारी है कि लोभ, वो लोभ हम भौतिक सामग्री भौतिक संपत्ति भौतिक चीजें इकट्ठा करने से क्षणिक संतुष्टि हो जाएगी, वैसे खुजलाने के समान है। पर जो मन की बीमारी है वो लोभ जरूर रहेगा, और जब मन की बीमारी लोभ रहेगी तो क्या होगा कि हमारे पास कितनी भी चीजें हैं हमारे पास क्या है हम देख नहीं पाएंगे, हमारे पास क्या नहीं है हम वो देखेंगे। हमारे पास हमेशा चुनाव होता है कि मेरे पास क्या है और क्या नहीं है। तो जो आधुनिक समाज है वो विज्ञापनों से क्या करता है, सारे समाज के लोगों को दिखाता है आपके पास क्या नहीं है। तो क्या होता है, उसके कारण हमेशा लोग असंतुष्ट रहते हैं। तो ये हमारी प्राचीन वैदिक संस्कृति, इसकी इतनी महिमा थी कि गरीब से गरीब व्यक्ति भी संतुष्ट रहता था। पर ये हमारे आधुनिक पाश्चात्य संस्कृति की ये महिमा है, महिमा इन डबल कोट्स, क्या कि अमीर से अमीर व्यक्तियों को वो असंतुष्ट रखता है। क्योंकि तो कितना भी अमीर हो, अब कितना लेटेस्ट कार लेके आए तो क्या है, कंपनी नया कार निकालेगी, मेरे पास वो कार नहीं है। कितनी भी नई चीज लेके आए हमेशा नए निकलते रहेंगे। तो इसलिए जो धन के पीछे जो करते हैं वो हमेशा असंतुष्ट रहते हैं। तो ये अवधूत ब्राह्मण बताते हैं कि मैंने देखा कैसे धन के कारण लोग पश्यामी धनिना क्लेशम, सिर्फ क्लेश मिलता है, इसीलिए मैंने धन का पूरा परित्याग कर दिया, मैं यहाँ पे जंगल में आ गया हूं। तो ये एक बहुत एक्सट्रीम मार्ग है, वो साधारण लोग नहीं कर सकते, पर कम से कम यह समझना चाहिए कि जो धन है वह हमें संतुष्ट नहीं कर सकता है। इसका मतलब यह नहीं है कि धन महत्वपूर्ण नहीं है, ऐसे धन है उसकी तुलना हमारे खाने में नमक से की जाती है। अभी आज सब बोल रहे थोड़ा नमक ज्यादा है कड़ी में, तो कल्पना कीजिए सिर्फ प्लेट में सिर्फ नमक ही होता तो हम कुछ खा ही नहीं पाते। पर एक समाज के आप कल्पना कीजिए, कोई होटल में बैठा है और सबके प्लेट में सिर्फ नमक है, कोई खा नहीं पा रहा है, कोई शक्ति नहीं प्राप्त कर रहा है, पर सिर्फ एक दूसरे के प्लेट के ऊपर इसके पास इतना नमक है और इसके पास उससे ज्यादा नमक है, इसके पास उसे ज्यादा नमक है, और नमक चाहिए मुझे और नमक चाहिए, पर नमक से कोई संतुष्टि नहीं होने वाली है। तो धन जो है वो हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है, इट इज इम्पोर्टेंट बट नॉट ऑल इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण है पर परम महत्वपूर्ण नहीं है। उसके जैसे अन्न में नमक महत्वपूर्ण है, उसके बिना स्वाद नहीं होता है। तो अगर बिल्कुल भौतिक जरूरतें जो है वह पूर्ण करने के लिए भी नमक नहीं है, हमारे पास धन नहीं है, तो बहुत समस्या आ सकती है। पर अगर हम सोचते हैं कि धन प्राप्त करने से ही समस्याओं का हल हो जाएगा, वो कैसे है सोचना कि नमक प्राप्त करने से ये स्वादिष्ट अन्न मिल जाएगा, वो नहीं होने वाला है। एक संतुष्ट जीवन के लिए हमें क्या चाहिए? युधिष्ठिर महाराज को जब नारद मुनि मिलते हैं महाभारत में, तो नारद मुनि यहाँ पे भी है, वो चर्चा करते हैं, वो बताते हैं कि वैदिक पद्धति क्या है। बोलते हैं कि जो गृहस्थ है, जो राजा है, युधिष्ठिर महाराज सभी गृहस्थ थे, तो बोलते हैं कि गृहस्थ को तीन चीजों को अपने जीवन में संभालना चाहिए, धर्म, अर्थ और काम। बोलते हैं कि इतना धर्म का पीछा नहीं करना चाहिए कि अर्थ और काम को भूल जाए, इतना अर्थ का पीछा नहीं करना चाहिए कि धर्म और काम को भूल जाए, और इतना काम का पीछा नहीं करना चाहिए कि धर्म और अर्थ को भूल जाए। तीनों का समन्वय रखना चाहिए, धर्म, अर्थ और काम। तीनों का समन्वय मतलब कि जो गृहस्थ है उसको धर्म के लिए समय निकालना चाहिए। साधारणतः हम देखते भगवान कृष्ण भी वो जब गृहस्थ की भूमिका कर रहे थे तो वो सुबह उठ के ध्यान करते थे, दान लेते थे, पूजा करते थे, यज्ञ करते थे, एक आदर्श मानव के समान। भगवान भगवद्गीता के तीसरे अध्याय के 22 23 श्लोक में 24 श्लोक में बताते कैसे कि मैं भी एक आदर्श उदाहरण देता हूँ, यदि हम निवर्ते जातु कर्मण्य तंद्रिता तंद्रिता, भगवान बोलते हैं कि मैं बड़े ध्यान पूर्वक मेरे कर्तव्य का पालन करता हूँ। क्यों? क्योंकि समाज को आदर्श रखने के लिए, लोक संग्रहम एवापी। तो जो गृहस्थ है उसे उसको बहुत सी जिम्मेदारी होती है, पर धर्म के लिए समय निकालना चाहिए। और साथ साथ अगर कोई गृहस्थ बोलता है मैं 24 घंटे धर्म ही करूंगा, तो फिर वो गृहस्थ बना ही क्यों? फिर उसको ब्रह्मचारी या सन्यासी बनना चाहिए। तो उसको अर्थ के लिए भी योजना करनी चाहिए, अर्थ के लिए योजना करना चाहिए, कुछ नौकरी होनी चाहिए, कुछ खेती होनी चाहिए, कुछ प्रॉपर्टी होनी चाहिए, तो अर्थ के लिए योजना करनी चाहिए। और तो ऐसे नहीं करना चाहिए कि अर्थ के लिए इतना योजना करते, आजकल लोग बोलते कि मेरा जॉब इतना समय लेता है कि मुझे जब के लिए समय नहीं है, धर्म के लिए समय नहीं है। तो फिर हमें अगर वो बहुत ही इमरजेंसी आने वाली की परिस्थिति तो बात अलग है, पर साधारणतः ऐसी नौकरी करनी चाहिए जिससे हमें समय मिल जाए काफी कार्य करें। तो अर्थ की प्राप्ति करना यह भी गृहस्थ का कर्तव्य है। तो और साथ साथ जो काम है, अगर कोई गृहस्थ है तो अपने परिवार के साथ रहता है, पुत्र उत्पत्ति करता है, परिवार का पालन करता है, परोपकार संग करता है, ये माया नहीं है, ये वास्तव में अगर कोई गृहस्थ है तो उसको अपने परिवार वालों के साथ समय बिताना चाहिए और उनको उनकी देखभाल करनी चाहिए। तो वास्तव में अगर कोई गृहस्थ है वो कहता है कि मैं मेरे परिवार वालों का समय नहीं बिताऊंगा, तो वो फिर सवाल उठता है कि गृहस्थ बनने की जरूरत ही क्या थी। तो समय किस लिए बिताना, वो काम वासना ऐसे नहीं है कि सिर्फ इंद्रतृप्ति है, वास्तव में वो जो गृहस्थ का जीवन है उसका एक अंग है, तो उसके लिए भी समय होना चाहिए। आजकल का अगर हम जीवन देखते हैं, कलयुग का इतना विकृत जीवन है कि धर्म, अर्थ और काम, इनमें से लोग सिर्फ अर्थ के पीछे हैं। तो पति पत्नी भी दोनों नौकरी करते हैं और शायद वो मिलते भी नहीं है, और उसके कारण क्या हो गया है कि जो संस्कृति सारी अभी विध्वस्त हो गई है, और उससे क्या होता है क्योंकि जो परिवार वाले हैं वो इतना समय नौकरी में डाल देते हैं कि वो अपने दफ्तर में जो लोग हैं उनसे ज्यादा उनके साथ ज्यादा समय बिताते हैं और घर वालों के साथ कम समय बिताते हैं। और उसी कारण कई बार क्या होता है, अभी लंदन के एक सर्वे एजेंसी ने एक रिपोर्ट लाया था, व्हेन ऑफिस बिकम्स होम, जब आपका दफ्तर आपका घर बन जाता है, क्योंकि अभी परम पूज्य देवामृत महाराज मुंबई में आए थे तो वो बता रहे थे उसके बारे में, बोल रहे कि लोग सोचते हैं कि मैं घर में आऊंगा तो मेरी जो पत्नी है वो इतनी सारी मांगे करती है, इतनी सारी उसकी अपेक्षा है मुझसे, वो पूरा करने के लिए कैसे करने का पता नहीं है। मेरे घर में बच्चे है वो इतने जिद्दी है, उनका क्या करने का मुझे पता नहीं है। वो सोचता है कि मैं दफ्तर में ही रहूंगा और सिर्फ घर वालों को थोड़े पैसे दे दूंगा। और फिर क्या होता है इससे, अब दफ्तर में बहुत से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स कि जो विवाह के बाहर के संबंध जोड़ते हैं, वो सोचते हैं कि दफ्तर में सब कुछ ऑर्गेनाइज्ड है, नियमबद्ध है, सब नियमबद्ध नहीं सब कुछ संयोजित है, नियोजित है, तो उससे वहीं पे अपना घर बना लेते हैं। तो जो वैदिक संस्कृति में समन्वय बताया है, जो बैलेंस बताया है, वह आजकल की आधुनिक संस्कृति पूर्णतया उध्वस्त कर देती है। तो कई बार लोग सोचते हैं कि अगर हम धार्मिक बन जाएंगे तो हमें संन्यास लेना पड़ेगा। नहीं, ऐसी बात नहीं है। वैदिक शास्त्रों में बहुत अच्छी तरह से वर्णन किया है कि व्यक्ति को अपना गृहस्थ जीवन भी कैसे बिताना चाहिए। और उससे हम देखते हैं कि भारतीय संस्कृति में बहुत से सन्यासी थे, बहुत से ब्रह्मचारी थे, पर हमेशा के समय में अधिकांश लोग गृहस्थ ही थे और वो गृहस्थ जीवन अच्छी तरह जी रहे थे। और इसका सबूत है कि भारत बहुत ही समृद्धशाली देश था। ये सारे पाश्चात्य अलेक्जेंडर से लेकर मोहम्मद बिन तगलक तक सब ये आक्रमण करके भारत में क्यों आए, क्योंकि भारत समृद्धशाली था। और भारत की समृद्धि कौन निर्माण कर रहा था? सन्यासी और ब्रह्मचारी नहीं कर रहे थे, गृहस्थी कर रहे थे। इसका मतलब है कि अर्थ महत्वपूर्ण है। और वैदिक जीवन पद्धति ऐसी है कि धर्म, अर्थ और काम तीनों का समन्वय रखना। तो इस उपाख्यान में क्या हुआ है कि जो नलकुवर मणिग्रीव है वो काम के प्रलोभन से धर्म को भूल गए हैं और काम के वासना में इतने मत्त हो गए हैं कि जब नारद मुनि जैसे आदर्श राजा आए हैं, आदर्श ऋषि आए हैं, महान ऋषि आए हैं, वो क्या कर रहे हैं, उनकी ओर ध्यान भी नहीं दे रहे। तो कई बार लोगों को लगता है कि राजा को इतना सारा आदर दिया जाता था, राजा से कभी कभी बहुत सी रानियां होती थी, उसकी सेविकाएं होती थी और बड़े ऐश्वर्य में रहता था। तो क्षत्रिय प्रवृत्ति जो लोग हैं उनको अर्थ और काम की जरूरत होती है। और उसको अगर क्षत्रिय प्रवृत्ति के व्यक्ति को अगर बोले कि आप संन्यास ले लो, उसको संभव नहीं है। इसीलिए भीष्म पितामह का इतना गुणगान किया जाता है कि वो क्षत्रिय कुल में जन्मे थे, क्षत्रिय राजमहल में रह रहे थे, पर उन्होंने ब्रह्मचर्य का व्रत का पालन किया, तो वो बहुत, इसलिए वो महाजन है, वो बहुत अनोखी व्यक्ति है वो। पर साधारणतया क्षत्रिय को अर्थ और काम की जरूरत होती है और उसकी पूर्ति करने की उसको सुविधा दी जाती है, पर महत्वपूर्ण क्या है, उसको धर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। कितना भी बड़ा राजा हो उसे क्या करना है, ऋषि आएगा तो उसे आदर करना है, उसका स्वागत करना है, उसके पैर को धोना है, उसको अपने राज सिंहासन पर बैठाना है। जब विश्वामित्र आते हैं दशरथ महाराज के राजसभा में, तो दशरथ महाराज के प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं कि साधु आता है तो कुत्ते के सावधान रहते हैं। पर जब विश्वामित्र आए दशरथ महाराज के राजसभा में तो क्या किया, दशरथ महाराज स्वयं दौड़ते हुए बाहर चले गए विश्वामित्र को स्वागत करने के लिए, और फिर आकर उन्होंने उनको अपने राज सिंहासन पर बिठा दिया और उनको बोला आप मेरे इस राज्य में आए हैं, मेरे राज दरबार में आए हैं, मैं कृतज्ञ हूँ और मैं इसके लिए आपको क्या दे सकता हूँ, मैं मेरा राज्य आपको अर्पण कर देता हूँ। और दशरथ महाराज को पूरी तरह से पता था कि विश्वामित्र ये राज्य हड़पने नहीं वाले, वो इनसिक्योर नहीं थे, वो कुछ जानते थे कि ये एक पद्धति है जिससे कि हम आदर व्यक्त करते हैं। और ऑफकोर्स अगर विश्वामित्र राज्य लेते थे वो स्वीकार कर लेते थे, पर वो जानते थे कि विश्वामित्र आसक्त नहीं है। तो ये एक आदर्श है जो 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 साधु पुरुष है वह पूरी तरह से विरक्त है, वो महत्वपूर्ण है। और जो गृहस्थ है वह जो साधु पुरुष है उनसे समर्पित है, सरेंडर है, उनसे आदरपूर्वक बर्ताव करता है। तो जो है इससे क्या होता है, वो धर्म जो अर्थ और काम के पीछे जो गृहस्थ व्यक्ति लगा हुआ है तो उसका जो कंट्रोल वाल्व है, उसका जो नियंत्रक है वो है धर्म। क्योंकि धर्म का पालन करना है, क्योंकि धर्म किस तरह से पालन करना है, दो प्रकार के धर्म है, वर्ण का धर्म है और आश्रम का धर्म है। और दोनों से जो गृहस्थ है उसको लोभ वासना से बचाया जाता है। क्या वर्ण का धर्म क्या है कि आपको दान देना है, तो इसीलिए गृहस्थ कितना भी कमाऊंगा तो मुझे दान देना ही है। और इसीलिए क्या होता है, वो दान देना मतलब कभी कभी भक्त सोचते हैं कि मैं एक भक्त मुझे बताया था कि मैं अभी मेरी इच्छा है, मैं रोज भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि एक समय मेरे ऐसे जीवन में आए कि मैं प्रभुपाद जी 50% इनकम देने को बोला है, मैं 51% दूंगा, पर मैं इतना धनी हो जाएगी फिर मैं 51% दूंगा, अभी मैं 1% भी नहीं दूंगा। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि दान देना यह एक कार्य नहीं है, यह एक आदत है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि दान देना, जैसे जप करना, ऐसे नहीं कि एकादशी के दिन 108 माला करें और बाकी दिन कुछ भी माला ना करें। जैसे हमारा खाना है, वो रोज करना पड़ता है। तो जो गृहस्थ है उसके लिए दान देना ये केवल एक कार्य नहीं है, ये एक आदत होनी चाहिए। जब धन मिल जाता है तभी इसका कुछ विभाग मुझे भगवान को देना है, ये चेत, ये आदत होनी चाहिए। अगर आदत नहीं होती है तो क्या होता है, लोभ बढ़ते जाता है। और फिर जब धन आएगा तो अभी और थोड़ा आने के बाद 51% दूंगा, और थोड़ा आने के बाद 51% दूंगा, और फिर वो कभी देंगे ही नहीं। और भले ही देंगे तो फिर क्या होगा, क्योंकि वो देने की आदत नहीं है, पर आप दुखोगे इतना सारा धन दे रहे, या फिर बहुत सम्मान की अपेक्षा होगी, मैं इतना धन दिया था, मेरा नाम बड़े गोल्ड सुनहरे अक्षरों में आना चाहिए। तो फिर उस प्रकार से त्याग के त्याग से वास्तव में ज्यादा आध्यात्मिक प्रगति नहीं होती है। क्रिश्चियन धर्म में जीसस बताते हैं कि अगर आप दान दे रहे हैं तो एक हाथ से दान दे रहे, दूसरे हाथ को पता ही नहीं हो जाए आप दान दे रहे हैं, इस तरह से दिखावा नहीं करना है हमें दान देने का। तो ये जो है कि जो दान देना, ये पहला वर्ण धर्म, जो वर्ण धर्म मतलब गृहस्थ जो वर्ण, एक वर्ण है, सॉरी जो आश्रम है, तो जो भी वर्ण में है उसके अनुसार वो व्यक्ति पैसे कमा रहा है, और उसके अनुसार आश्रम धर्म के अनुसार जब वो गृहस्थ है उसको दान देना है, और दान नियमित रूप से देना है, जितना प्रतिशत दे सकते हैं। प्रभुपाद जी ने आदर्श 50% बोला है, कलयुग में बहुत से लोगों को संभव नहीं होता है, पर क्या होता है, प्रभुपाद जी ने इतना उच्च स्तर बताया है कि कई भक्त कुछ भी पालन नहीं करते, 1% भी नहीं देते हैं वो। पर हम देखते हैं कि जो क्रिश्चियन धर्म का इतना प्रचार हो रहा है, बहुत हजारों लोग कन्वर्ट हो रहे हैं। तो क्यों हो रहे हैं, क्योंकि उनके क्रिश्चियन धर्म में वो टाइथिंग कहते हैं, टाइथिंग मतलब कि 10% आपको देना चाहिए, और सब लोग देते हैं। कोई भी क्रिश्चियन अगर वो सीरियस क्रिश्चियन है तो 10% जरूर देता है, कई बार बहुत देते हैं। तो क्योंकि क्या है, श्री राधा गोकुलानंद भगवान की, श्री गौर नित्याय चंद्र भगवान की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय। क्योंकि धर्म का प्रस्थापना करनी है, धर्म का प्रचार करना है, तो उसके लिए धन जरूरी है। तो इसलिए ये जो दान है उससे जो लोभ है वह नहीं उत्पन्न होता है, क्योंकि दान देना ही है मुझे। और दूसरा है कि जो भी गृहस्थ है वह यह भी जानता है कि मुझे वानप्रस्थ और संन्यासवाद स्वीकार करना है, तो उससे भी लोभ उसके जीवन को पकड़ नहीं लेता है, क्योंकि जानता है कि कितना भी कमाऊंगा बाद में त्याग ही करना है, बाद में त्याग ही करना है। तो क्यों, क्योंकि साधारणतः क्या होता है, हम मृत्यु के बारे में सोचते नहीं है, मृत्यु के समय कोई त्याग नहीं, तो मृत्यु बहुत दूर है लगता है हमको, बहुत दूर है, कितना दूर है पता नहीं, पास में बैठा होगा पर हमें लगता है बहुत दूर है। तो पर अगर हमको पता है कि मुझे वानप्रस्थ लेना है, तो क्या 50 साल का हो जाऊंगा, 55 साल का हो जाऊंगा, तभी लेना है, तो तभी क्या होता है, तभी उससे मानसिक स्तर पे ही वैराग्य तैयार हो जाता है कि हाँ मुझे ये करना है, तो लोभ से बच जाता है। तो इस तरह से दान और आश्रम का, उच्च आश्रम का प्रवेश कर, इन दोनों से के द्वारा जो वैदिक संस्कृति है वह व्यक्ति को अर्थ प्राप्त करने में पाबंदी नहीं लगाती है, पर अर्थ प्राप्त करने समय उसको नियंत्रण रखती है। तो ये हो गया अपराधर्म। अपराधर्म मतलब कि इसमें धर्म अर्थ और काम, और फिर काम की पूर्ति होने के बाद, पूर्ति मतलब काम संतुष्ट नहीं होगा, पर हम काम से विल बिकम फेड अप ऑफ लस्ट, हम काम से उब जाएंगे, राइट। तो उब जाए कैसे होता है, कृष्णाचंद्र ठाकुर जो दूसरे अध्याय के 71-72 श्लोक है, आपूर्यमान वचल प्रतिष्ठम विहाय कामान यह सर्वान, वो बताते, बहुत सुंदर बताते हैं कि जो जो साधक है ही शुड लूज फेथ इन हिज मटीरियल डिजायर्स, बहुत सुंदर वाक्य बोले, उसको अपनी भौतिक इच्छाओं से श्रद्धा उठ जानी चाहिए। मतलब क्या, भौतिक इच्छाएं रहेगी पर माया बोलती ये करो आपको भोग मिलेगा, आपको आनंद मिलेगा, नहीं इससे आनंद नहीं मिलने वाला, बहुत बार कर लिया है मैंने, इसमें कोई आनंद नहीं है। तो भौतिक इच्छाओं से श्रद्धा उठ जानी चाहिए, दुर्भाग्य क्या होता है, हमारी भगवान से श्रद्धा उठ जाती है, भौतिक इच्छाओं से और माया से श्रद्धा नहीं उठती है। पर ये कैसे होता है, माया से श्रद्धा कैसे उठ जाती है, कि अगर हमारे धर्म का पाठ, अगर हम जो गृहस्थ जीवन है, इंद्रिय तृप्ति है, वह धर्म के साथ करते हैं, तो वो इंद्रिय तृप्ति से शुद्धिकरण नहीं होता है, पर धर्म से शुद्धिकरण होता है। इसीलिए भक्ति अगर इंद्रिय तृप्ति में लगते हैं, कभी कभी अलग अलग प्रकार के इंद्रिय तृप्ति है लगते हैं, पर अगर जप हमेशा करते रहे, साधना अच्छी करते रहेंगे, तो क्या होगा, धीरे धीरे ऐसा समय आ जाएगा कि इंद्रिय तृप्ति से मन उठ जाएगा। प्रभुपाद जी बोलते हैं सेंस ग्रेटिफिकेशन बिकम डिस्टेस्टफुल, कि उसमें कोई आकर्षण नहीं रहेगा, फिर भी मन तो प्रलोभन करते रहेगा, पर मन को हम बोल पाएंगे कि बहुत बार कर चुका है, इसमें कुछ आनंद नहीं है। जो सांख्य तत्वज्ञानी है, एक ईश्वर कृष्ण नाम के, वो अपने सांख्य कारिका में सुंदर उदाहरण देते हैं कि जीवात्मा कैसे माया से अनासक्त हो जाता है, कैसे उसकी माया से श्रद्धा निकल जाती है। वो बोलते हैं कि एक नाट्य ग्रह है, उसमें एक अभिनेत्री नृत्य कर रही है और बहुत से प्रेक्षकगण उसके नृत्य को देखने आए हैं, पर ये अभिनेत्री ऐसी है कि उसको एक ही प्रकार का नृत्य पता है, तो ऐसे हाथ हिलाना, ऐसे पैर हिलाना, ऐसे हाथ हिलाना, हो गया और नृत्य खत्म। उसको कुछ नए स्टेप्स, नए चाल, नए प्रकार का नृत्य पता नहीं है, तो जो प्रेक्षकगण आए हैं देखने को और देखते हैं एक ही प्रकार का नृत्य कर रही है, और फिर उठ जाने लगते हैं, पर ये अभिनेत्री चाहती थी कि चले जाए, बैठे रहे, क्योंकि उससे उसकी रोजी रोटी हो रही है, तो जाने जाती, तो क्या करती है, जैसे ही कोई जाने लगता है तो कुछ तेरे हाथ पैर नया तरह से हिलाती है, और प्रेक्षक को लगता है अरे कुछ नया नृत्य करने वाली, तो रुक जाते हैं वो, पर बाद में देखते हैं अरे उसको कुछ नया आता ही नहीं है, तो पुराने आज नाच ही करने लगती है, तो थोड़ा सा हाथ पैर कुछ नया हिलाती है, पर बाद में पुराने नृत्य में लग जाती है, क्योंकि उसको नया कोई नृत्य आता ही नहीं है। तो यह जो श्रृंखला है चलती रहती है, पर जब वो प्रेक्षक समझ जाता है इसको कोई नया नृत्य आता ही नहीं है, नया तरह से हाथ पैर हिलाएगी पर बाद में पुराना नृत्य करने वाली है, तो फिर उसका मन उब जाएगा और फिर वो उठ के चला जाएगा। तो उस तरह से वे कहते हैं कि जो माया है हमेशा नए नए रूपों से हमें आकर्षित करती है, पर वो रूपों के पीछे जो भोग है वह पुराना ही है, पर जैसे ही हमारा मन उब जाता है कुछ नया प्रलोभन मार देते हैं, नया प्रलोभन। पर जब हम समझ जाएंगे कि माया आहार निद्रा भय मैथुन, इसके अलावा मुझे कोई और भोग नहीं दे सकती है, जब हम समझ जाएंगे तो हम उससे उसको त्याग कर सकते हैं, उससे विरक्त हो सकते हैं। पर ये दुर्भाग्य ये है कि जो माया है वो इस तरह से इतने आकर्षक रूप से नए नए प्रलोभन देती है कि हम फंस जाते हैं, ये नया है, इसमें जरूर कुछ भोग होगा, इसमें जरूर होना ही चाहिए। और ये प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जो आधुनिक संस्कृति है वो क्या कर रही है, एक्सपैंडिंग द इग्नोरेंस, जो अज्ञान को विस्तारित कर रही है, मोह को विस्तारित कर रही है, तो माया नए नए प्रलोभन में आती है, तो नए प्रकार, छोटा सा मोबाइल है, मोबाइल से हमें बात करनी है उसका काम है, पर क्या है, वो मोबाइल नए नए रंग के आएंगे, नए नए रूप के आएंगे, नए नए फैसिलिटीज के साथ आएंगे, और कोई भी अभी नया चाहिए, और मोबाइल हो, कार हो, घर हो, तो इस तरह से अलग अलग इंद्रिय विषय जो है वह माया इस तरह से नए नए रूपों में लेके आती है, जिससे कि हम मोह में फंसे रहते हैं। पर बुद्धि के स्तर पर हमें समझना चाहिए कि ये नया दिखने को है, पर वास्तव में इसमें कोई नया आनंद नहीं है, पुराना आनंद ही है, आहार निद्रा भय मैथुन के अलावा कुछ आनंद नहीं है। तो ये कैसे है, ये हम बौद्धिक स्तर पर समझ सकते हैं, पर जब माया का प्रलोभन आता है तब वो याद रखना बड़ा मुश्किल है, उसके लिए हमें भगवान की कृपा चाहिए। तो भगवान हमें वो, अगर हम उनकी सेवा करते हैं प्रामाणिक रूप से, तो जो प्रलोभन का समय आता है तब भगवान हमें ये प्रलोभन है, इसमें कोई आनंद नहीं है, और फिर हम उससे बच जाते हैं। तो इस तरह से अगर कोई अर्थ और काम में लग भी रहा है पर धर्म का त्याग नहीं कर रहा है, तो धर्म के द्वारा शुद्धिकरण हो जाता है और फिर व्यक्ति मोक्ष की ओर जा सकता है। तो साधारणतः क्या होता है, प्रभुपाद जी यहाँ पे बोल रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति गरीब है तो उसके ज्यादा अर्थ नहीं है, तो ज्यादा काम में लगता नहीं है वो, तो इसीलिए अगर अर्थ और काम ज्यादा नहीं कर सकता तो और करेगा क्या, तो धर्म में लग जाएगा, ये पहली संस्कृति है। पर कलयुग ऐसे है कि अर्थ और काम नहीं, अर्थ नहीं है तो भी लोग किसी न किसी काम की योजना कर लेते हैं। हम देखते हैं कोई झोपड़पट्टी में वो व्यक्तियों को खाने को अन्न नहीं है पर उनके यहाँ पे डिश स्टार्ट ही है, तो क्या है, अर्थ नहीं है पर काम चाहिए, जो अभी लंदन इंग्लैंड वगैरह से जो यूरोप के जो देश कई देश है वो वेलफेयर स्टेट्स कहते हैं। वेलफेयर स्टेट मतलब कहते हैं कि अगर आपको हम हमारे नागरिकों की देखभाल करते हैं तो कैसे देखभाल करते हैं कि अगर नागरिकों को कोई नौकरी नहीं मिलती है तो हम उनको पैसे देंगे। तो इस तरह से वो कहते हैं कि हम हमारे नागरिकों को भूखा नहीं मरने देंगे। पर जो नागरिक है जो नौजवान युवक है वो क्या करते हैं वो नौकरी करते नहीं है जानबूझ के और जो पैसा मिलता है सरकार की ओर से डोल कहते हैं उसको सरकार से पैसा मिलता है वो लेके ड्रग्स खा लेते हैं। और ड्रग्स करके क्या होता है तो अर्थ नहीं अर्थ अर्थ हो जाता है तो क्या करते हैं थोड़ा बहुत अर्थ काम चाहिए उनको तो खाना खाने से कुछ आनंद नहीं मिलता है थोड़ा संतुष्ट हो जाएगी पर ड्रग्स से क्या काल्पनिक जीवन चले जाएंगे। और क्या है अगर धर्म नहीं है और अर्थ और काम पूरी तरह से समाज को ध्वस्त कर देता है। ऐसे वहां पे क्या है कई बार स्त्री पुरुष विवाह के बिना मिलते हैं और फिर संतान उत्पन्न हो जाती है गर्भपात बहुत करते हैं पर कभी संतान उत्पन्न हो जाती है संतान उत्पत्ति हो जाती है तो फिर वो संतानों को कभी कभी लोग अनाथालय में डाल देते हैं कभी कभी तो लोग क्या करते हैं वो संतान को जाते हैं उसको कचरे के डिब्बे में डाल के रख देते हैं और बहुत परेशानी हो जाती है। तो सरकार ने क्या नियम बनाया कि अगर कोई स्त्री है जिसको पुत्र हो गया उसका विवाह नहीं हुआ है पुत्र पुत्री हुई है तो सरकार उनको स्पेशल कुछ तो भी फैसिलिटी देगा अधिक पैसा देगा जिससे कि वो अपने पुत्र की देखभाल कर सके। तो इसलिए क्या होता है वहां पे स्त्रियां जानबूझकर खुद को गर्भवती करा देती है ताकि ज्यादा पैसा प्राप्त कर सके और फिर बच्चे की देखभाल भी नहीं करती सिर्फ बच्चे को दिखा के लगता है कि मेरा बच्चा है और पैसा प्राप्त करती रहती है। तो धर्म नहीं है तो आर्थिक दृष्टि से क्या है पाश्चात्य देश में आपको विवाह किए बिना गर्भवती होना और मां बनना ये आर्थिक दृष्टि से अच्छा है क्योंकि आपको सरकार से पैसा मिल जाएगा। तो क्या है धर्म नहीं है तो अर्थ और काम जीवात्मा को ऐसे भवंडर में फंसा देगा कि उससे कैसे निकलेगा उसको पता ही नहीं चलेगा। तो इसलिए धर्म ये एक चेक सिक्योरिटी वाल्व है कंट्रोल वाल्व है। जैसे मोटर है तो मोटर का प्रेशर पानी बहुत बढ़ जाता है तो उसका प्रेशर हम कम कर सकते हैं। तो इसे धर्म जो है अर्थ और काम की स्वभाव क्या है जितना अर्थ मिलेगा उतना ज्यादा हम पीछे लगेंगे जितना काम मिलेगा उतना काम ज्यादा पीछे लगेगा। पर जो धर्म है वह हमें नियंत्रण कराता है और गुमराह होने से बचाता है। तो जो हमको श्री प्रभुपाद जी ने वैदिक संस्कृति केवल नहीं दी है वैदिक संस्कृति के सर्वोच्च जो भेद है वो दी है वो वैष्णव संस्कृति। तो इसीलिए श्रीमद्भागवत की शुरुआत में क्या बताया है कि जो धर्म अर्थ काम मोक्ष का चक्कर है इसको कैतव धर्म बताया है। कैतव धर्म बताया है क्यों क्योंकि वो धर्म के पालन से हृदय संतुष्ट नहीं होता है भौतिक तरह से संतुष्टि मिल जाएगी पर जो आत्मा की पुकार है आत्मा की मांग है भागवत प्रेम की वो पूरी नहीं होगी। तो इसलिए भागवत जो धर्म अर्थ काम मोक्ष है उसके विपरीत में कुछ बताता है धर्मस्य अपवर्गस्य नार्थो अर्थाय अपकल्पते। वो सुंदर दो श्लोक जो है साधारण लोग कहते धर्म क्यों करना है अर्थ प्राप्ति के लिए पर भागवत कहता है धर्मस्य ही अपवर्गस्य न अर्थ अर्थायोपकल्पते कि धर्म आपको अर्थ के लिए नहीं करना है अपवर्ग के लिए करना है। बहुत बार लोग आते हैं कोई मंत्र जप करते हैं कोई पूजा पाठ करते हैं सोचते क्या है कि अरे मेरा लॉटरी लग जाए मेरा नौकरी मिल जाए मेरे बेटे की शादी हो जाए तो नहीं धर्म इसके लिए नहीं करना है। धर्म किसने करना धर्मस्य अपवर्गस्य हम जप क्यों कर रहे हैं भौतिक समस्याओं के हल के लिए नहीं कर रहे हो जाएगी हल पर उसके लिए हम जप नहीं कर रहे हम क्यों जप कर रहे हैं हम भगवान के प्रेम प्राप्ति करें अपवर्ग प्रभुपाद जी बोलते पवर्ग मतलब इस भौतिक जगत में फंसा रहना अपवर्ग इस भौतिक जगत से पार जाना। तो हम धर्म का पालन इसलिए करते हैं अपवर्ग हम परम शुद्ध हम शुद्ध होकर शुद्ध भक्त के रूप में भगवान की सेवा कर सके। तो धर्म का उद्देश्य अपवर्गस्य न अर्थ अर्थायोपकल्पते। कई बार लोग पूछेंगे आप 2 घंटा जॉब करते हो 2 घंटे में आप कितने सारा बिजनेस कर सकते हैं कितने सारे आप पढ़ाई कर सकते हैं कितने सारे मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं उसके लिए समय है हमारे पास पर ये समय उसके लिए नहीं है। सारा जीवन सिर्फ मार्क्स प्राप्त करने के लिए या पैसा प्राप्त करने के लिए नहीं है जीवन के अलग उद्देश्य भी है तो उसके लिए समय है पर ये समय उसके लिए नहीं है धर्म से ही अपवर्गस्य। और फिर अर्थ मिल गया तो फिर क्या करना है न अर्थस्य धर्मे कांतस्य कामो लाभाय स्मिता कि अगर धर्म अर्थ मिल गया तो अर्थ को काम के लिए इस्तेमाल नहीं करना है कामो लाभाय न अर्थस्य धर्मे कांतस्य अर्थ किस लिए करना है, यूज कर इस्तेमाल करना है, धर्म एकांतस्य, परम धर्म के लिए। भक्ति बाद अर्थ भी आता है वो भगवान की सेवा के लिए इस्तेमाल करना है। तो इसीलिए भगवान भक्त के पास पैसा आता है तो जो फलगु वैरागी है, मतलब मैं पैसा को स्पर्श नहीं करूंगा, कहते मैं पैसे को स्पर्श नहीं करूंगा। एक तरह से भाव अच्छा है कि वैराग्य है, पर यह अपूर्ण वैराग्य है, क्योंकि क्योंकि जो वैराग्य क्या है कि एक तरह से धन को त्याग कर दिया। जो आसक्ति है दो प्रकार से, अहम और मम। अहम मतलब ये मेरा है और मैं। तो जो जो काम वासना है, जो अर्थ प्राप्ति है, वह क्या है, अहम के स्तर पर है, सॉरी मम के स्तर पर है। ये मेरा है, ये घर मेरा है, ये कार मेरी है, ये जायदाद मेरी है। तो जीवात्मा भगवान की भक्ति को छोड़कर ये दो प्रकार से भोग करने का प्रयास, मम, मैं बहुत कुछ प्राप्त करूंगा। जो कर्मी है वो मम को बढ़ाने का प्रयास करते हैं, और पर जो ज्ञानी है वो मम को त्याग कर देते हैं पर अहम को बढ़ाते। मैं इतना बड़ा त्यागी हूं, मैं इतना बड़ा त्यागी हूं, मैं पैसे को स्पर्श नहीं करता। तो ये जो है भौतिक दृष्टि से ये त्याग है, पर अगर हम आध्यात्मिक दृष्टि से देखेंगे तो अहंकार का त्याग नहीं है, ममत्व का त्याग जो है, जो अहम अहंकार, उसका त्याग नहीं किया है। तो उसने मम का त्याग कर दिया है, अहम का त्याग नहीं किया है। तो इसलिए वो अपूर्ण त्याग है। पूर्ण त्याग क्या है, निर्ममो निरअहंकार स शांति अधिगच्छति। वो दूसरे अध्याय के 71वें श्लोक में वहां बोलते हैं कि दोनों का त्याग कर, निर्ममो निरअहंकार, कि महम और मम दोनों का त्याग करके क्या करते हैं कि भगवान की सेवा में लगना है। तो भक्त चाहे तो भौतिक सामग्री इस्तेमाल कर सकता है भगवान की सेवा के लिए, भक्त चाहे तो सारे सामग्री का त्याग कर सकता है जो भी उसके लिए जरूरी है। भक्त का एक ही उद्देश्य होता है कि क्या मेरे भक्ति के लिए अनुकूल है, क्या मेरे भक्ति के लिए अनुकूल है। अगर मेरे भक्ति के लिए अनुकूल है कि एक बहुत बड़ा मंदिर बनाओ और उस मंदिर में रहो और प्रचार करो, तो भक्त वो चला जाएगा। अगर मेरे भक्ति के लिए अनुकूल है कि ये मंदिर को त्याग कर ऐसे जगह पर चले जाओ, यहाँ पे मंदिर भी नहीं, छोटी झोपड़ी में रहूंगा, वहां पर प्रचार करूंगा, वो भी तैयार है। प्रभुपाद जी के पास इतने बड़े बड़े मंदिर थे, पर प्रभुपाद जी कोई भी मंदिर में हमेशा नहीं रहते थे, हमेशा वो प्रचार करते रहते थे। और कई बार जब प्रचार करते थे तो ऐसी जगह पे जाते थे कि वहां प्रभुपाद, अगर प्रभुपाद जी का ऐसा स्वभाव था कि हमेशा वो भगवान के लिए नई नई चीजें करना चाहते थे। तो जब अमेरिका में हमारा आंदोलन बहुत अच्छी तरह चल रहा था तो प्रभुपाद जी अमेरिका में रहकर सारे भक्त डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, बुक्स प्रचार कर रहे थे, प्रभुपाद आनंद से रह सकते थे। प्रभुपाद जी क्या बोले, भारत में आ जाओ, भारत में आके प्रचार करने लगे। तो भारत में उस समय कोई मंदिर नहीं था, कोई जगह नहीं थी, बहुत सी अविधता थी, पर प्रभुपाद जी नहीं, यहाँ पे रहे। और फिर प्रभुपाद जी कई बार अफ्रीका में प्रचार हो रहा था पर इतना अच्छा प्रचार नहीं हो रहा था, तो प्रभुपाद जी स्वयं अफ्रीका में चले गए और ऑन द फ्रंट कैसे प्रचार करना है। प्रभुपाद जी का बहुत बड़े बड़े मंदिर थे पर वो बड़े बड़े मंदिरों में आराम से नहीं रह रहे थे, वो जरूर चाहते थे कि बड़े बड़े मंदिर हो ताकि भगवान की सेवा अच्छी तरह से हो सके, लोगों को आकर्षित कर सके। तो भक्त चाहता है अर्थ खुद की नृत्य के लिए नहीं, न धर्म से एकांत से कामो लाभाया ही सुता। अर्थ चाहिए भक्त को पर वो अपनी इंद्रवृत्ति के लिए नहीं, वो भगवान की सेवा के लिए। यह युक्त वैराग्य। पर यहाँ पे नलक और मणिगुरु का क्या हो रहा है कि उनके वो क्या काम वासना में लग गए, धर्म को भूल गए हैं। पर नारद मुनि अपने दूरंदेशी देख रहे हैं ये कितने ऐसे काम वासना में क्यों फंस गए, क्योंकि अर्थ बहुत ज्यादा है उनके पास। तो इसीलिए उनके काम वासना को रोकना उनको उपदेश दे सकते, कितने मूर्ख हो तो इस तरह से स्त्री का संग कर रहे हो, ये कर रहे हो, कर रहे हो, इस उपदेश से कुछ नहीं हुआ क्योंकि वो उन्मत्त हो गए। तो क्या किया, उनका अर्थ उनसे खींच लिया, उनका अर्थ खींच लिया, उनका काम अपने आप बंद हो गया। और फिर वो जो है परम धर्म, वो क्या है, जब नंद महाराज के घर आंगन में वो जन्म लिए वृक्षों के रूप में, तो हमेशा भगवान का दर्शन कर पाए, वो स्मरण कर पाए, और उससे उनका शुद्धिकरण हो गया। तो इस तरह से जो शुद्ध भक्त है वो जानते हैं कि ये धर्म अर्थ काम को किस तरह से, जो प्रेम पुमर्थो महान, परम देश जीवन का प्रेम, उसकी उत्पत्ति के लिए कैसे इस्तेमाल करना है। तो जो शुद्ध भक्त के मार्गदर्शन में हम कार्य करते हैं तो हमारे पास भी अर्थ आ सकता है। हमें भी जो भौतिक धर्म है, हम भी कभी कभी यज्ञ करते हैं, क्रियाकांड करते हैं, पर उस सबका उद्देश्य जो परम पुरुषार्थ है प्रेम, उसकी प्राप्ति हो। तो इसीलिए हम जब भक्ति कर रहे हैं तो हमेशा हमें यह विचार रखना चाहिए कि क्या है मेरा अंतिम उद्देश्य, क्या है अंतिम उद्देश्य,
भगवान की भक्ति प्राप्त करना, और उसके लिए जो भी अनुकूल है वो स्वीकार करूंगा, और वो स्वीकार करके मैं भगवान की भक्ति की ओर अग्रसर रहूंगा। सिद्धि अन्यत्र नेते तत्र परिश्रमम तत्र समीक्षमाना। जो ज्ञान जो बुद्धिमान व्यक्ति क्या देखता है, सिद्धि अन्यत्र, अगर इसमें कुछ सिद्धि है, इसमें मैं मेरी आध्यात्मिक प्रगति है, तो मैं इसको स्वीकार करूंगा, नहीं तो परिश्रमम तत्र समीक्षमाना। ये केवल एक परिश्रम है, मुझे ये नहीं करना है। तो ये व्यवसायत्मिका बुद्धि ये हम भागवतम पढ़ के प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि हमारे गुरुदेव है वो हमें जनरल प्रिंसिपल्स देंगे, तत्व बताएंगे कि ऐसे कार्य करना है, पर व्यवहारिक रूप से क्षण क्षण में मुझे क्या करना है, मुझे अगर ये सेवा करनी चाहिए या सेवा करनी चाहिए, अभी पढ़ाई करना चाहिए अभी प्रचार करना चाहिए, अभी अगर मैं ग्रह से तो ये जॉब लेना चाहिए वो जॉब लेना चाहिए, इस व्यक्ति से विवाह करना चाहिए उस व्यक्ति से विवाह करना चाहिए, ये सब जो निर्णय है ये हर एक निर्णय के लिए हमारे पास हमारे गुरुदेव या वरिष्ठ भक्त जरूर हो गए, ऐसे नहीं है। पर हम जो शास्त्र से तत्व अगर समझ जाते हैं, तत्व के आधार पर अगर हम जीवन जितना जीते हैं उतना भगवान दामी बुद्धि हुक्म देंगे कि भक्ति के लिए क्या अनुकूल है मैं इसको स्वीकार करूंगा, और ये प्रतिकूल है स्वीकार नहीं करूंगा, और इस तरह से हम तेजी से प्रगति करके भगवत धाम की प्राप्ति कर सकते हैं। तो सारांश में हमने चर्चा की कि सबसे पहले कैसे काम अर्थ जो है वो बहुबंधन में फंसाता है, अर्थ जो है वो लोभ की उत्पत्ति करता है और हमेशा व्यक्ति को असंतुष्ट रखता है, जो अपूर्णता है वो उसकी पूर्णता अर्थ या अर्थ से नहीं होती है, वो केवल भगवत भक्ति भगवत प्रेम से होती है। फिर हमने देखा कि वैदिक संस्कृति में ये अर्थ कैसे और आकर्षण जो है वो कैसे नियंत्रित किया जाता है, कि धर्म अर्थ और काम तीनों का समन्वय रख के जीवन जीना चाहिए जो व्यक्ति अर्थ को प्राप्त कर रहा है गृहस्थ जीवन में। और वो जो धर्म का दो परिभाषा होते हैं, एक है दान और दूसरा है कि ऊंचा आश्रम बाद में स्वीकार करने की तैयारी रखना। और फिर हमने देखा कि पड़ा धर्म में क्या है कि धर्म अर्थ और काम ये सब हम एक ही उद्देश्य के लिए इस्तेमाल करते हैं, कि क्या उद्देश्य है, भगवान की भक्ति भगवान का प्रेम करना, और उसके लिए जो भी अनुकूल है हम स्वीकार करेंगे, और वो स्वीकार करके वो जो बुद्धि है क्या क्या अनुकूल है क्या प्रतिकूल है, बुद्धि कैसे आएगी, वो जब हम भगवान की भक्ति प्रामाणिकता से करते उससे भगवान हमें बुद्धि देते हैं, और फिर वह आधार रखे ये मेरे भक्ति के अनुकूल है स्वीकार, ये नहीं है स्वीकार नहीं करूंगा, उससे हम भगवत धाम की ओर तेजी से अग्रसर रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की शिल प्रभु पाद की गौर भक्त वृंद की चाचिताय गौर प्रेमानंद की। थैंक यू वेरी मच।